नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ओशो के ज्ञान जगत में, जहां ओशो अपनी वाणी के कठोर प्रहार से हमारे इर्द गिर्द धर्म के नाम पर अज्ञान की खिंची दीवार को तोड़ते हैं और हमें मुक्त करते हैं खुले आकाश में विचरण के लिए। धर्म के नाम पर मर चुके पुराने शब्दों में नई जान डालकर ओशो सभी रहस्य दर्शियों दार्शनिकों के वचनों की आज के संदर्भ में व्याख्या करके हमारे बोध को जगाते हैं। आज का प्रवचन बहुत प्यारा है, जिसमें ओशो हमें हरी कथाओं के लोक में ले चलेंगे और हमें समझाएंगे कि आखिर हरी कथा है क्या, कौन उसका पात्र है। यूं तो धर्म के नाम पर अनेकों तरह के आयोजन और कथाएं कराई जाती हैं, कहीं सत्यनारायण की कथा तो कहीं मद भागवत कथा, कहीं रामायण का पाठ तो कहीं गीता पर प्रवचन। पर कोई भी वचन भगवान का वचन कब बन जाता है? ध्यान, मौन, प्रेम अथवा प्रार्थना, कौन सी प्रक्रिया से गुजरकर हम उसके पात्र बन सकते हैं? ओशो इसका एक ही जवाब देते हैं कि जब जीवन विचार मुक्त होता है तो बांसुरी की तरह बांस की खाली पोंगरी हो जाता है। उस शून्य में जो बहता है वह परमात्मा का ही स्वर होता है, वो भगवान के ही वचन होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भी कुछ बोले वो हरि कथा हो जाती है। कौन कितना शून्य हो गया, आग्रह मुक्त हो गया, इसी आधार पर अवतारों की व्याख्या भी ओशो करते हैं और राम को आंशिक अवतार और कृष्ण को पूर्ण अवतार क्यों कहा जाता है, ये भी ओशो से हम जानेंगे। आज का प्रवचन ओशो की प्रवचन श्रृंखला जो बोले सो हरि कथा, प्रवचन नंबर 1 से लिया गया है।
पहला प्रश्न, भगवान जो बोले तो हरि कथा, हरी कथा की यह घटना क्या है? क्या यह घटना मौन व ध्यान की प्रक्रिया से गुजरने के बाद घटती है अथवा प्रार्थना से? हरी कथा का पात्र और अधिकारी कौन? क्या हम आपके प्रवचनों को भी हरी कथा कह सकते? योग मुक्ता, सहजों का प्रसिद्ध वचन है, जो सोवे तो सुन्न में, जो जागे हरि नाम, जो बोले तो हरि कथा, भक्ति करे निकाम। जीवन जब विचार मुक्त होता है तो व्यक्ति एक पोली बांस की पोंगरी जैसा हो जाता। जैसे बांसुरी फिर उससे परमात्मा के स्वर प्रवाहित होने लगते। बांसुरी से गीत आता है, बांसुरी का नहीं होता, होता तो गायक का है। जिन ओंठों पर बांसुरी रखी होती है उन ओंठों का होता है। बांसुरी तो सिर्फ बाधा नहीं देती, ऐसे ही कृष्ण बोले, ऐसे ही क्राइस्ट बोले, ऐसे ही बुद्ध बोले, ऐसे ही मोहम्मद बोले, ऐसे ही वेद के ऋषि बोले, उपनिषद के दृष्टा बोले। और इस सत्य को अलग अलग तरह से प्रकट किया गया, जैसे कृष्ण के वचनों को हमने कहा श्रीमद् भगवत गीता। अर्थ है भगवान के वचन, कृष्ण से कुछ संबंध नहीं है। कृष्ण तो मिट गए, शून्य हो गए, फिर उस शून्य में से जो बहा वह तो परम सत्ता का है। उस शून्य में से जो प्रकट हुआ वह तो पूर्ण का है। और कृष्ण ऐसे शून्य हुए कि पूर्ण के बहने में जरा भी बाधा नहीं पड़ी, रंज मात्र भी नहीं। इसलिए कृष्ण को इस देश में हमने पूर्णावतार कहा, राम को नहीं कहा पूर्णावतार, परशुराम को नहीं कहा पूर्णावतार। राम अपनी मर्यादा रख के चलते, उनकी एक जीवन दृष्टि है, उनका आग्रहपूर्ण आचरण है। वे पूरे शून्य नहीं है, पूर्ण की कुछ झलकें उनसे आई हैं, लेकिन पूर्ण पर भी उनकी शर्तें हैं। पूर्ण उनसे उतना ही बह सकता है जितना उनकी शर्तों के अनुकूल हो। उनकी शर्तें तोड़ के पूर्ण को भी बहने नहीं दिया जाए। इसलिए राम को इस देश के रहस्यवादियों ने अंशावतार कहा। ये प्यारा ढंग है एक बात को कहने का। समझो तो लाख की बात है, न समझो तो दो कौड़ी की है। अंशावतार का अर्थ यह होता है कि राम ने पूरी पूरी स्वतंत्रता नहीं दी परमात्मा को प्रकट होने की। कोई नैतिक व्यक्ति नहीं दे सकता। नैतिक व्यक्ति का अर्थ ही यह होता है कि उसका जीवन सशर्त है। वह कहेगा ऐसा ही हो तो ठीक है, उसके आग्रह हैं। उसने एक परिपाटी बना ली है, एक शैली है उसकी। जिस रेल की पटरियां और उन पर दौड़ती हुई रेलगाड़ियां चलती तो वो भी हैं, गतिमान तो वे भी होती हैं, मगर पटरियों पर दौड़ती हैं, पटरियों से अन्यथा नहीं। नदियां भी चलती हैं, नदियां भी बहती हैं, वे भी गतिमान होती हैं, लेकिन उनकी कोई पटरियां नहीं है, उनके हाथ में कोई नक्शे भी नहीं है। कोई अज्ञात प्राणों के अंतश्चेतन में छिपा हुआ कोई राज बाहर ले जाता है उन्हें सागर की ओर। और कैसी अद्भुत बात है कि छोटी से छोटी नदी भी सागर को खोज लेती, बिना मार्गदर्शक के, बिना किसी का हाथ पकड़े, बिना किसी शास्त्र के, बिना किसी समय सारणी के, बिना किसी नक्शे के चल पड़ती है और पहुंच जाती है। और कैसी उसकी चाल है, कोई नियम में आबद्ध नहीं, जहां मिला मार्ग कभी बाएं कभी दाएं, कई बार लगता है कि अभी नदी बहती इस तरफ थी अब बहने लगी उस तरफ, ऐसे कहीं पहुंचना होगा, लेकिन फिर भी हर नदी पहुंच जाती, पहुंच ही जाती है, जो चल पड़ा वह पहुंच ही गया। महावीर का प्रसिद्ध वचन है, जो चल पड़ा वह पहुंच ही गया, मगर चलने चलने में भी भेद होंगे, एक मर्यादा में बंधी हुई गति है और एक कृष्ण का अमर्याद व्यक्तित्व है। इसलिए कृष्ण को समझना मुश्किल, क्योंकि ना नीति है कुछ, ना अनीति है कुछ, ना शुभ है कुछ, ना अशुभ है कुछ। जैसा ले चले परमात्मा, बाएं तो बाएं, दाएं तो दाएं, किसी पंथ का कोई आग्रह नहीं, अपंथ ही है, पंथ मुक्त है, वामपंथी नहीं है कि बाएं ही चलेंगे, दक्षिणपंथी नहीं है कि दाएं ही चलेंगे, मध्यमार्गी नहीं है कि मध्य में ही चलेंगे। बुद्ध को भी इस देश में पूर्ण अवतार नहीं कहा, क्योंकि बुद्ध का भी आग्रह है मध्य मार्ग का। प्रत्येक पैर सम्यक होना चाहिए, देखो तो सम्यक, उठो तो सम्यक, बैठो तो सम्यक। जीवन की एक सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। बुद्ध ने अनुशासन दिया, इसलिए बौद्धों में उनका जो नाम है वह है अनुशास्ता। महावीर को भी पूर्ण अवतार नहीं कहा जा सकता, उनकी जीवन शैली तो और भी बंधी हुई है, राम से भी ज्यादा, बुद्ध से भी ज्यादा। वे तो पैर भी फूंक फूंक कर रखते हैं, वे तो रात करवट भी नहीं बदलते कि कहीं करवट बदले अंधेरे में कोई चींटी चींटा दब जाए, तो एक ही करवट सोए रहते। वे तो भोजन भी आग्रह से लेते, आग्रह से लेने का अर्थ वो सुबह सुबह निर्णय करके निकलते हैं कि ये मेरी शर्त पूरी होगी तो भोजन लूंगा, नहीं तो भोजन नहीं लूंगा। भोजन भूख से नहीं लेते, भोजन के ऊपर एक शर्त बंदी, जिसे सुबह ही ध्यान में उतरेंगे, उठते समय निर्णय करेंगे कि आज ऐसी घटना घटे, उस द्वार से भोजन लूंगा जिस द्वार पर कोई स्त्री अपने बच्चे को स्तन से दूध पिलाती खड़ी हो। अब अगर ये संयोग मिल जाए तो भोजन लेंगे, मिले न मिले, क्योंकि जिस द्वार पर स्त्री बच्चे को दूध पिलाती खड़ी हो, एक तो ऐसा द्वार खोजना कठिन, कोई द्वार पर खड़े होकर किस लिए बच्चे को दूध पिलाएगा, पूरा घर पड़ा है, द्वार पर खड़े होकर बच्चे को स्तन से दूध पिलाना, जहां राह गुजर रही, लोग आ रहे जा रहे, भारत में तो मुश्किल होगा। फिर अगर कोई स्त्री दूध पिला भी रही हो, तो जरूरी तो नहीं कि उसने महावीर को भोजन देने के लिए तैयारी रखी हो। भोजन घर में बना भी ना हो अभी, यह भी हो सकता है भोजन भी बना हो, तो जरूरी तो नहीं कि महावीर उसके द्वार पर अपना भिक्षा पात्र फैलाएं और वो न कह दे कि आगे बढ़ो। हर घर से तो भिक्षा मिल नहीं जाती, और महावीर उसी घर से भोजन लेंगे जिस घर का निर्णय करके निकले। एक बार तो यूं हुआ कि 6 महीने तक भोजन नहीं लिया, अस्थि पंजर मात्र रह गए, क्योंकि शर्त ही पूरी ना हो। शर्त ऐसी थी कि पता नहीं पूरी होती कि ना होती, शर्त किसी को बताते भी नहीं थे, बता दें तो फिर तो शर्त ही ना रही, फिर तो कोई ना कोई पूरा करवा देगा, शिष्य खबर कर देंगे। 6 महीने और जो शर्त पूरी ना हो आज, कल भी वही रहेगी, कल पूरी ना हो परसों भी वही रहेगी, जब तक पूरी ना हो तब तक वही रहेगी, तब तक शर्त भी बदलेंगे नहीं। नहीं तो उसमें भी चालबाजी कर सकता आदमी का, बदल लो ये शर्त तो पूरी होती नहीं, चालबाजी का सवाल ही नहीं है। महावीर कोई किसी और के आदेश से अपने ऊपर ऐसा आरोपण नहीं कर रहे हैं, अपना ही उनका आरोपण है, अपना ही आग्रह है, निज से निकला है। शर्त ले ली थी कि उस द्वार से भिक्षा लूंगा जिस द्वार के सामने एक बैलगाड़ी खड़ी हो, बैलगाड़ी में गुड़ भरा हो और बैलगाड़ी के पीछे एक गाय खड़ी हो और गाय ने गुड़ में सींग मारकर अपने सींगों में गुड़ लगा लिया हो, उसके दोनों सींगों पर गुड़ लगा हो, बैलगाड़ी अभी भी खड़ी हो गई ना हो, गाय के दोनों सींगों पर गुड़ लगा हो, उस द्वार से अगर भिक्षा मिली तो लूंगा। 6 महीने में ये शर्त पूरी हुई, जब पूरी हुई तो ही, एक बार शर्त ले ली 3 महीने लग गए। शर्त ले ली थी कि कोई राजकुमारी जिसके पैरों में जंजीरें पड़ी हों, प्रार्थना करे भोजन का तो भोजन लूंगा। अभी तो राजकुमारी होगी तो पैरों में जंजीरें क्यों पड़ी होंगी, और पैरों में जिसके जंजीरें पड़ी होंगी वो क्या प्रार्थना करेगी बेचारी कि मेरे घर से भोजन ले लो, उसका क्या घर, ये तो कारागृह होगा। जब 3 महीने में ये शर्त पूरी हुई तो महावीर ने भोजन लिया। महावीर का जीवन सशर्त है, अति नैतिक है, अति मर्यादाबद्ध है। इसलिए जैनों ने भी महावीर की चिंतना को, देशना को शासन कहा है, जिन शासन। एक एक सूत्र है उस शासन का। भारत के मनीषी सिर्फ कृष्ण को छोड़कर किसी को पूर्णावतार नहीं कह सके, क्योंकि कृष्ण की कोई शर्त नहीं है, कोई आग्रह नहीं, कोई आचरण नहीं, कोई मर्यादा नहीं। कृष्ण की शून्यता समग्र है, पूर्ण है, वे हैं ही नहीं, उनसे परमात्मा को जो करवाना हो करवा ले, ना करवाना हो ना करवाए। इसलिए हम उनके वचनों को श्रीमद् भगवत गीता कह सके, उनके वचन उनके नहीं हैं, उनसे आए हैं मगर उनके नहीं हैं। जैसे वृक्षों पर फूल खिलते मगर वृक्षों के ही थोड़े होते, उन फूलों में जमीन का दान होता है, सूरज की किरणों का मिलन होता है, हवाओं की भेंट होती। वे फूल इस समस्त सृष्टि के अनुदान से निर्मित होते हैं, कहीं से रंग आता है, कहीं से रूप आता है, कहीं से गंध आती है, कुछ मिट्टी देती, कुछ आकाश देता है, कुछ हवाएं देती हैं, कुछ प्रकाश देता है। ऐसे ही जब कोई बिल्कुल शून्य होता है तो फिर जो बोले वह हरि कथा हो जाएगी। इसलिए नहीं कि वह हरि के संबंध में बोल रहा, हरि के संबंध में बोलने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, हरि के संबंध तो घर घर कथाएं होती रहती, जहां तहां कथाएं होती रहती। मगर सहजों के सूत्र को समझना, पहला सूत्र उसकी भूमिका, जो सोवे तो शून्य में, जो यूं सो गए कि शून्य ही जिनका विश्राम हो गया है, जिन्होंने शून्य में अपने अहंकार को विसर्जित कर दिया है, शून्य ही जिनकी सुसुप्ति है। पतंजलि ने कहा है समाधि में और सुसुप्ति में थोड़ा सा ही भेद है, थोड़ा सा भी और बहुत भी, यूं तो रत्ती भर, लेकिन रत्ती इतनी बड़ी कि जमीन आसमान को अलग अलग कर दे। समाधि और सुसुप्ति में समानता बड़ी है कि दोनों ही हालत में तुम खो जाते हो। गहरी सुसुप्ति में जब स्वप्न भी नहीं होते तो तुम कहां बचोगे, तुम लीन हो गए होते हो विराट में। इसलिए तो सुसुप्ति के बाद आधा घड़ी की सुसुप्ति भी हो जाए तो सुबह कितने ताजे होकर लौट आते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कौन दे गए ये ताजगी, कौन दे गया ये रस, कौन भर गया फिर से तुम्हें जीवन से। कल सांझ तो कितने थके थे, कितने टूटे थे, कितने उखड़े थे, फिर पुनर्जीवित हो उठे हो, सब थकान मिटी, सब हार मिटी, सब पराजय खो गई, सब चिंताएं विदा हो गई, तुम किसी अमृत का घूंट पी के लौट आए हो। मगर तुम्हें कुछ पता नहीं कहां घटाइए, कैसे घटाइए, कहां तुम गए, तुम थे ही नहीं तब जाना हुआ था, तुम मिटे थे तब विराम आया था, तुम खो गए थे लीन हो गए थे, कोई बचा ही ना था मैं भाव तब सुसुप्ति, स्वप्न भी ना बचा था, विचार भी ना बचा था, तो मैं कहां बचता, मैं भी तो एक स्वप्न है, एक विचार है, एक धारणा मात्र है। मन तो बिल्कुल ही मिट गया था, तिरोहित हो गया था, वास्तवीभूत हो गया था, तब सुसुप्ति में तुम परमात्मा में लीन हो गए, जैसे लहर सागर में लीन हो जाए, फिर उठे तो ताजी होकर उठे, सागर का सारा रस लेकर उठे, सागर धो गया सब चिंताएं, सब धूल पहुंच गया, सब मन की जो जो गंदगी थी सब बहा ले गया, आई बहार ताजा कर गई, आई बाढ़ सब कचरा कूड़ा बाहर ले गई, वसंत से गुजर गए, मधुमास से गुजर गए, अमृत में एक डुबकी लगाए, इसलिए सुबह ताजी हो। पतंजलि कहते हैं सुसुप्ति में व्यक्ति परमात्मा में लीन होता है, मगर एक भेद है समाधि और सुसुप्ति का, सुसुप्ति में उसे होश नहीं होता और समाधि में उसे होश होता है, इतना सा भेद है होश का, घटना एक ही घटती है। सुसुप्ति में भी शून्य हो जाते हो मगर तुम्हें होश नहीं होता, इसलिए पाते हो और फिर खो देते हो। जब होश ही नहीं है, जैसे बेहोश आदमी के हाथ में किसी ने कोहिनूर हीरा रख दिया, अब इसका क्या भरोसा कहां पटक आएगा, कहां खो आएगा, कुत्ते को भगाने के लिए फेंक के मार दे, इसका क्या भरोसा, सोए हुए आदमी का क्या भरोसा है इसके हाथ में तुम कुछ भी दे दो। इसे पता ही नहीं है ये है, हाथ है, हाथ में कुछ है, क्या है, ये बेहोश है। समाधि में बस इतना ही फर्क है, सुसुप्ति धन होश, सुसुप्ति धन ध्यान, समाधि में दिया जलता रहता होश का, मैं तो मिट जाता है, विचार मिट जाते, मगर एक परिपूर्ण जागरूकता छाई रहती। इसलिए सुबह जब तुम उठते हो तो इतना ही नहीं कि तुम अमृत का घूंट पी के आ गए अनजाने में, तुम जानते हो तुम कहां गए थे, कैसा घूंट पिया, कैसे लौटे, तुम्हें राह का पता है, आने जाने का पता है। इसलिए तुम जब जाना चाहो तब जा सकते हो, जब आंख बंद करो तब चले जाओ। जो सोवे तो शून्य में, इस समाधि की अवस्था को कहेंगे शून्य में सो जाना, मगर होश पूर्वक, बोध पूर्वक। ऐसे शून्य से जो फिर जागता है, जो जागे हरि नाम, फिर उस जागरण में उठो तो हरि नाम है, बैठो तो हरि नाम है, बोलो तो न बोलो तो, चुप रहो तो, गुनगुनाओ तो, कुछ भी करो। ऐसा मत सोचना कि समाधि से लौटा हुआ व्यक्ति राम 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 हरि हरि ऐसा जपता रहता है, ये मतलब नहीं है। जो सोवे तो सुन में, जो जागे हरि नाम, ऐसे व्यक्ति की निद्रा समाधि होती है और ऐसे व्यक्ति का जागरण प्रभु स्मरण होता है। जो बोले तो हरि कथा, अगर ऐसा व्यक्ति बोले तो हरि कथा, न बोले तो भी हरि कथा, उसके पास भी बैठ जाओ तो हरि कथा। जरूरी नहीं है कि शब्द ही हो, निशब्द भी हो, सुनने वाला चाहिए, तरंगित होने वाला हृदय चाहिए। तो ऐसे समाधिस्थ व्यक्ति के पास उठने बैठने में भी हरि कथा हो जाएगी। भक्ति करें निहकाम, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो भी है सब भक्ति है, कोई कामना नहीं है। तुम्हारी तो भक्ति झूठी भक्ति है, तुम्हारी भक्ति में तो हमेशा कामना होती ही है। तुम भक्ति भी करते हो तो पीछे वासना होती है कि ये मिल जाए, वह मिल जाए। न चलो संसार का मांगोगे तो परलोक का मांगोगे, मगर मांगोगे जरूर। तुम्हारी परमात्मा की धारणा ही ये है कि मिल जाए तो उससे ये मांग लूं, वह मांग लूं। सोचो कभी अगर परमात्मा मिल जाए तो क्या करोगे? एकदम मांगो ही मांगों की किताब बन जाएगी। फेरिस पर लिखो एक दिन बैठकर कि क्या क्या मांगोगे परमात्मा मिल जाए, तो तुम चकित हो जाओगे कि क्या क्या छोटी छोटी बातें मांगने का मन में विचार आ रहा है, कि धन मांग लूं, पद मांग लूं, कि शाश्वत जीवन मांग लूं, कि कभी मरू ना, ये मांग लूंगा, वो मांग लूंगा, ऐसा धन मांग लूंगा कि चुके ही नहीं, ऐसा पद मांग लूंगा जो छिने ही नहीं, ऐसा यौवन मांग लूंगा जो मिटे ही नहीं। और छोटे बच्चों का ही नहीं, बड़े से बड़े बूढ़ों का भी, भक्ति के नाम पर वासना का ही खेल चलता रहता है। छोटा बच्चा भी जब अपने पिता के पास आके डैडी डैडी करने लगता है तो पिता जानता है कभी पैसे मांगेगा, कि आज सिनेमा जाना है, कि गांव में प्रदर्शनी आई, कि मदारी तमाशा दिखा रहा, कि मिठाई खरीदनी, कि वो आइसक्रीम बिक रही, ये कुछ मांगेगा। पति जानते हैं कि अगर घर आए और पत्नी पैर से जूता निकाल के रख दे और पानी से पैर धोने लगे तो समझ लो कि फंसे, कि साड़ी खरीदवाएगी। कुछ इरादे खतरनाक दिखते। पति घर आए और फूल ले आए और आइसक्रीम ले आए और मिठाई की टोकरी ले आए तो पत्नी भी जानती कि इरादे क्या है, वो भी समझती कि कुछ मांग भीतर, कि आज मेरी देह मांगेगा। वो पहले से देख के ये रंग ढंग बातें करने लगी कि मेरे सिर में दिन भर से दर्द है, कि मेरी कमर टूटी जा रही, कि आज नौकरानी नहीं आई, बच्चे के दांत निकल रहे हैं, चूल्हा नहीं जल रहा, लकड़ी गीली है, मुझे बुखार चढ़ रहा है। वो भी रास्ते खोजने लगेगी। इस जगत में तो हम सारे संबंध ही वासना के बनाते। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बोल रही थी कि पता नहीं कहां मेरी अंगूठी खो गई, 100 रुपए की थी। नसरुद्दीन ने कहा बिल्कुल फिक्र न कर, मेरी भी 100 रुपए खो गए, मैं बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा। पत्नी बोली तुम्हारे कहां खो गए? कहां? उसने कहा कहां खोते, मगर मैं फिक्र नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अंगूठी मिल गई 100 रुपए की। पत्नी ने कहा तुम्हें अंगूठी कहां मिली जी? कहा वहीं जहां खोए मेरे रुपए, खीसे में मेरे रुपए थे, 100 रुपए तो नदारत हो गए लेकिन अंगूठी खीसे में मिल गई। ये पत्नियां पहले पतियों के खीसे टटोलती, पहला काम। नसरुद्दीन ने अपने बेटे फजलू को मार रहा था कि तूने 5 रुपए क्यों निकाले, रख रुपए। उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों मार रहे हो जी, उसको तुम्हारे पास कोई सबूत? किसने 5 रुपए निकाले? उसने कहा है सबूत, घर में 3 ही आदमी, एक मैं हूं, मैंने निकाले नहीं, मेरे रुपए मैं क्यों निकालूंगा, और निकालूंगा ही तो फिर परेशानी क्या, चिंता क्या है? दूसरी तू है, तूने निकाले नहीं ये पक्का है। पत्नी ने कहा ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने नहीं निकाले? कहा नहीं निकाले तूने क्योंकि 150 रुपए में से 5 निकालेगी तू, 150 ही जाते। ये इसी हरामजादे की शरारत, 5 रुपए गए ये फजलू ने निकाले, तू निकालती 150 निकालती, मैं निकालता झगड़े का कोई सवाल उठता नहीं, मुझे पता ही होता कि मैंने निकाले, घर में 3 आदमी, रख दे फजलू 5 रुपए। इस जगत में नाते रिश्ते सब ऐसे हैं, मगर जगत के ही होते तो भी ठीक था। तुम परमात्मा के मंदिर में भी जाते तो कुछ मांगने की, मस्जिदों में दुआओं के लिए हाथ फैलाते हो मगर मांग, गिरजाघरों में, मजारों पर, तुम जहां जाओगे तुम्हारी वासना तुम्हारा पीछा करती है। सत्यनारायण की कथा करवाओगे, हरि कथा करवाओगे, रामायण करवाओगे, किसी पंडित को पकड़ लाओगे, ये रामचरितमानस मर्मज्ञ पंडित रामकिंकर शास्त्री, इनसे करवाओ, मगर पीछे प्रयोजन न तुम्हारी हरि कथा हरि कथा है, न तुम्हारा हरि भजन हरि भजन, क्योंकि तुम सदा कामना से भरे हो। सहजों का ये सूत्र समझो, इस सूत्र में सारी बात आ गई, जैसे पूरा धर्म आ गया, कुछ बचा नहीं, सारा निचोड़ आ गया योग का, भक्ति का, ज्ञान का। भक्ति करें निहकाम, एक ऐसी भी भक्ति है जो बिना वासना के होती, अकबर ने एक दिन तानसेन को कहा कि तानसेन बहुत बार तेरे संगीत को सुन के मैं ऐसा आंदोलित हो जाता हूं, मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति तेरे जैसा नहीं, तू बेजोड़, तू अद्वितीय। लेकिन कभी कभी एक सवाल मेरे मन में उठा था, कल रात ही उदाहरण के लिए उठाया, जब तू गया था वीणा बजाकर और मैं गदगद हो रहा था और घंटों तल्लीन रहा, तू तो चला गया वीणा भी बंद हो गई, मगर मेरे भीतर कुछ बजता रहा बजता रहा बजता रहा, और जब मेरे भीतर भी बजना बंद हुआ तो मुझे ये सवाल उठा, ये सवाल कई बार पहले भी उठा, आज तुझसे पूछे ही लेता हूं। सवाल मुझे हमेशा उठता है कि तूने किसी से सीखा होगा, तेरा कोई गुरु होगा, कौन जाने तेरा गुरु तुझसे भी अद्भुत हो। तूने कभी कहा नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, आज पूछता हूं, छिपाना मत। तेरे गुरु जीवित हैं, अगर जीवित हों तो मुझे उनके दर्शन करने। तेरे गुरु जीवित हैं, अगर जीवित हैं तो एक बार उन्हें दरबार ले आ, उनका संगीत सुनूं, ताकि ये जिज्ञासा मेरी मिट जाए। तानसेन ने कहा मेरे गुरु जीवित हैं, हरिदास उनका नाम है, वे एक फकीर हैं, वे यमुना के तट पर एक झोपड़े में रहते हैं, लेकिन जो आप मांग कर रहे हैं वो पूरी करवानी मेरे बस के बाहर है, उन्हें दरबार नहीं लाया जा सकता। हां, दरबार को ही वहां चलना हो तो बात और, वे यहां नहीं आएंगे, उनकी कुछ मांग ना रही। मैं तो यहां आता हूं क्योंकि मेरी मांग है, मैं तो यहां आता हूं क्योंकि अभी धन में मेरा रस है। रही तुलना की बात तो मेरी आप उनसे तुलना ना करें, कहां मैं कहां वे, मैं तो कहीं पासंग में भी नहीं आता। मुझे तो भूल ही जाएं, उनके सामने मेरा नाम ही ना रखें। और भी अकबर कुतूहल से भर गया, उसने कहा तो कोई फिक्र नहीं, मैं चलूंगा, तो इंतजाम कर, आज ही चलेंगे। उसने कहा और भी अड़चन है कि वे फरमाइश से नहीं गाएंगे, इसलिए नहीं कि आप आए तो वे गाएं। अकबर ने कहा तो वो कैसे गाएंगे? तानसेन ने कहा मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें, सुनने का एक ही उपाय है, चोरी से सुनना, जब वो बजाएं तब सुनना, इसलिए कुछ पक्का नहीं है, लेकिन मैं पता लगवाता हूं। आम तौर से सुबह 3 बजे उठ के वो बजाते, वर्षों उनके पास रहा हूं, उस घड़ी वो नहीं छोड़ते, जब तारे विदा होने के करीब होने लगते, अभी जब सुबह हुई नहीं होती, उस मिलन स्थल पर रात्रि के और दिन के वे अपूर्व गीतों में फूट पड़ते, अलौकिक संगीत उनसे जन्मता है। हमें छुपना पड़ेगा, हम 2 बजे रात चल के बैठ जाएं, कभी 3 बजे गाते, कभी 4 बजे गाते, कभी 5 बजे, कौन जाने कब गाएं। हमें छुप के बैठना होगा, चोरी चोरी सुनना होगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कोई है तो शायद ना भी गाएं। अकबर की तो जिज्ञासा ऐसी बढ़ गई थी कि उसने कहा कि चलेंगे, कोई फिक्र नहीं, रात जाके दोनों छुप रहे। 3 बजे और हरिदास ने अपना इकतारा बजाया। अकबर के आंसू थामे न थमे, यूं आह्लादित हुआ जैसा जीवन में कभी न हुआ था। फिर जब दोनों लौटने लगे रथ पर वापस, तो रास्ते भर चुप रहा, ऐसी मस्ती में था कि बोल सूझे ही नहीं। जब महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा, तब उसने तानसेन से कहा, तानसेन मैं सोचता था तेरा कोई मुकाबला नहीं, अब सोचता हूं कि तू कहां, तेरी कहां गिनती, तेरे गुरु का कोई मुकाबला नहीं। तेरे गुरु गुदड़ी के लाल हैं, किसी को पता भी नहीं, आधी रात बजा लेते हैं, कौन सुनेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और यह अद्भुत गीत यूं ही बसता रहेगा और लीन हो जाएगा। तेरे गुरु के इस अलौकिक सौंदर्य, इस अलौकिक संगीत का क्या रहस्य, क्या राज। तू वर्षों उनके पास रहा, मुझे बोल। उसने कहा, राज सीधा साधा है, दो दो चार जैसा साफ सुथरा है। मैं बजाता हूं इसलिए ताकि मुझे कुछ मिले, और वे बजाते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ मिल गया है। वो जो मिल गया है वहां से उनका संगीत बहता है। मांग नहीं है वहां, अनुभव, आनंद। आनंद पहले है, फिर उस आनंद से बहता हुआ संगीत है। मेरा संगीत तो भिखारी का संगीत है, यूं तो वीणा बजाता हूं लेकिन आंखें तो उलझी रहती, क्या मिलेगा। हृदय तो पूछता रहता है, आज क्या पुरस्कार मिलेगा, आज सम्राट क्या देंगे, प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपके चेहरे को देखता रहता हूं, पूरा पूरा नहीं होता वीणा में। इसलिए आप ठीक ही कहते हैं, मेरी उनसे क्या तुलना, वे होते हैं तो पूरे होते हैं। इस बात को ख्याल में रखना, जिस दिन तुम आनंद का अनुभव कर लोगे, उस आनंद से अगर भक्ति उठी, अर्चना उठी, वंदना उठी, तो उसका सौंदर्य और, वह इस पृथ्वी पर है पर इस पृथ्वी की नहीं, वह आकाश से उतरा हुआ फूल है। और जिस दिन तुम आनंद को अनुभव कर लोगे, उस दिन जो बोलोगे हरि कथा ही होगी।
तो मित्रों, ज्ञान के बोध से चाहे समग्रता पूर्वक समझ से, चाहे ध्यान से या मौन से, या फिर भक्ति प्रार्थना, कौन सी प्रक्रिया आपके लिए होगी ये तो आपको स्वयं चुनना है। और अपना हाथ ओशो को पकड़ा देना है। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में भी यह प्रवचन जारी रहेगा। आप इसका शेष भाग सुन सकते हैं। ओशो की ब्लेसिंग्स और ओशो के ढेर सारे प्रेम के साथ हमारा प्यार भरा नमस्कार।
कोई हृदय को चुराने आ गया है, इसलिए तो हमने भगवान को एक नाम दिया हरि। हरि का अर्थ होता है जो हृदय को चुरा ले, हरण कर ले। हरि का अर्थ होता है चोर। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा प्यारा शब्द भगवान को नहीं दिया गया। बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द दिए गए, राम, रहीम, रहमान, अल्लाह, जेहोवा, सब बड़े बड़े शब्द हैं। किसी का अर्थ होता है महाकरुणावान, किसी का अर्थ होता है महादानी, किसी का अर्थ होता है महासृष्टा। लेकिन हमने जो शब्द दिया है उसका कोई मुकाबला नहीं। हरि जैसा कोई शब्द दुनिया में नहीं है। हरि का अर्थ होता है चोर, जो चुरा ही ले जाए। तुम बचाए रहो, बचाए रहो, बचाए रहो, जिंदगी जिंदगी, मगर एक दिन वो चुरा ही ले जाएगा। शायद तेरी मोहब्बत कोई चुरा रहा है, और जब हरि चुराने आए तो बाधा न डालना। बस इतना ही भक्त को करना है, अड़चन न डालना, द्वार दरवाजे खुले छोड़ देना। चोर जब आए तो अतिथि मानना, स्वागत करना, बंधनवार सजाना। चोर जब आए तो अपने हृदय को खुद ही उसके चरणों में रख देना। इतनी ही तो भक्त की कला है।
Govinda.